मैं सुरेंद्र कुमार आप लोगों के लिए जलवायु विज्ञान के अंतर्गत चक्रवात की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं। चक्रवात नियतवाही पवन पेटियों में अनेक प्रकार के वायुमंडलीय विक्षोभ, एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस जैसे चक्रवात, प्रतिचक्रवात, तड़ित झंझा, टॉर्नेडो आदि उत्पन्न तथा विघटित होते हुए मुख्य पवन धारा के साथ गतिशील होते हैं। जलवायु शास्त्र में इन्हीं को वायुमंडल का द्वितीय परिसंचरण, सेकेंडरी सर्कुलेशन कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय प्रदेशों के मौसम पर द्वितीय परिसंचरण का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न प्रकार के चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों का विवेचन सरल एवं सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया गया है। चक्रवातों की अभिसरण पवन प्रणाली, कन्वर्जेंट विंड सिस्टम, विस्तृत वायु राशियों को धरातल से ऊंचाई तक उठाकर उनके शीतलन एवं उनके वृष्टि कराने में सहायक होती है। महासागरों से महाद्वीपों की ओर चलने वाले चक्रवात वहां के वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में नमी लाकर भर देते हैं। इसी प्रकार चक्रवात के द्वारा ही भूतल के अनेक भागों में दूर दूर तक वृष्टि संभव होती है। इसके विपरीत प्रतिचक्रवात अपनी अपसारी पवन प्रणाली डाइवर्जेंट विंड सिस्टम के द्वारा शुष्क एवं स्वच्छ मौसम उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। चक्रवात साइक्लोन वायुदाब की प्रमुख प्रणालियों के संदर्भ में बताया जा चुका है कि वास्तव में चक्रवात साइक्लोन न्यून दाब क्षेत्र अथवा लो का ही पर्यायवाची शब्द है। चक्रवात वस्तुतः उस वायुदाब प्रणाली को कहते हैं जिसमें केंद्र में अल्पतम वायुदाब के कारण हवाएं बाहर चारों ओर से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इसमें समदाब रेखाएं वृत्ताकार अथवा अंडाकार होती हैं। इस वायुभार प्रणाली में वायुदाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट बाहर से केंद्र की ओर स्थापित हो जाती है। पृथ्वी के दैनिक आवर्तन से उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण हवाएं समदाब रेखाओं को न्यून कोण पर काटती हुई चलती हैं। फेरल्स के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में पवन प्रवाह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों में पवन प्रवाह घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज होता है। जब न्यून दाब क्षेत्र गोलाकार न होकर दीर्घाकार होता है तब उसे गर्त चक्र, द्रोणी या ट्रफ कहते हैं। चक्रवातों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन मौसम वैज्ञानिक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को गर्त चक्र अथवा निम्न दाब क्षेत्र भी कहते हैं। ये चक्रवात दोनों गोलार्धों में 30 अंश तथा 65 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित प्रदेश में उत्पन्न होते हैं। इन्हीं अक्षांशों में अनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न उष्ण वायु राशियां शीतल ध्रुवीय वायु राशियों से परस्पर मिलकर ध्रुवीय वाताग्रकों का निर्माण करती हैं, जिन पर उत्पन्न तरंगों से गर्त चक्रों की उत्पत्ति होती है। ये चक्रवात पछुआ पवनों की पेटी में पश्चिम से पूरब की ओर चला करते हैं। इन्हीं के द्वारा वायुमंडल में मेघों की उत्पत्ति होती है जो अनुकूल परिस्थितियों में जलवृष्टि अथवा हिमवृष्टि प्रदान करते हैं। इनके द्वारा वायुदाब एवं तापमान में परिवर्तन हुआ करता है। सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें पहला आकृति एवं विस्तार, शेप एंड साइज। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की आकृतियों में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। इनमें समदाब रेखाएं प्रायः चक्राकार अथवा अंडाकार होती हैं। जब समदाब रेखाओं की आकृति वी जैसी होती है तब उन्हें वी आकृति गात्रचक्र, वी शेप डिप्रेशन कहा जाता है। अधिक चौड़े तथा छिछले चक्रवातों को निम्न दाब द्रोणिका, ट्रफ ऑफ लो प्रेशर कहते हैं। वी आकृति गर्त चक्र स्थूल रूप से अंडाकार होते हैं जिनका एक भाग अधिक चौड़ा होता है। इसके अधिक चौड़े भाग प्रायः उत्तर की ओर तथा दीर्घ अक्ष का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है। लघु अक्ष उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विस्तृत होता है। बड़े अक्ष की लंबाई छोटे अक्ष की लंबाई की लगभग दो गुनी होती है। इन चक्रवातों के व्यास की लंबाई 160 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर तक होती है, किंतु अधिकांश चक्रवातों के व्यास 300 से 1500 किलोमीटर के मध्य होते हैं। इन चक्रवातों का विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर तक अनुमानित किया गया है। एक चक्रवात का ऊर्ध्वाधर विस्तार वायुमंडल में 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। चक्रवातों के मार्ग, पाथ ऑफ साइक्लोन्स। वायुदाब एवं पवन पेटियों की तरह ऋतु परिवर्तन के साथ ही इन चक्रवातों के पथ भी विस्थापित हो जाते हैं। सामान्यतया शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातें पछुआ हवा के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चला करते हैं, तथापि प्रत्येक चक्रवात अपनी यात्रा स्वतंत्र मार्ग से पूरी करता है। उत्तरी अमेरिका में इन चक्रवातों के तीन मार्ग विशेष उल्लेखनीय हैं। पहला, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा से लगा हुआ पूरब जाने वाला मार्ग। दूसरा, कनाडा के पश्चिमी भाग से दक्षिण पूर्व मुड़कर मिसिसिपी घाटी से होते हुए ग्रेट लेक्स, न्यू इंग्लैंड तथा सेंट लॉरेंस की घाटी तक जाने वाला मार्ग। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी भाग से न्यू इंग्लैंड जाने वाला मार्ग। अनेक चक्रवात यूरोप तक पहुंच जाते हैं। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक चक्रवातों की उत्पत्ति बाल्टिक सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में होती है। भूमध्य सागर में विकसित चक्रवातों में से कुछ उत्तर पूर्व चलकर भूतपूर्व सोवियत रूस में प्रवेश करते हैं। अनेक भूमध्य सागरी चक्रवात शीतकाल में मध्य पूर्व के देशों में होते हुए उत्तरी भारत में प्रवेश कर जाते हैं, जिनसे यहाँ शीतकालीन वृष्टि होती है। साइबेरिया स्थित शीतकालीन प्रतिचक्रवात इन चक्रवातों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ग्रीष्मकाल में उत्तर की ओर विस्थापित होने के कारण उपोष्ण एवं उष्ण शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों से चक्रवातों का लोप हो जाता है। इस ऋतु में उत्तरी अमेरिका तथा रूस के आर्कटिक प्रदेशों में चक्रवातों की संख्या अधिक होती है। चक्रवातों के उत्पत्ति क्षेत्र, सोर्स रीजन ऑफ साइक्लोन। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति मुख्य रूप से ध्रुवीय वातावरणों पर होती हैं, किंतु अयनवर्ती क्षेत्रों से बाहर इनकी उत्पत्ति कहीं भी हो सकती है। इनकी उत्पत्ति और विकास ऋतु शीत ऋतु में अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी उत्पत्ति के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र से अल्सियन निम्न दाब क्षेत्र का विस्तृत महासागरीय तल तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे से आइसलैंड स्थित निम्न दाब क्षेत्र के मध्य का भाग। इन दो क्षेत्रों के अतिरिक्त साइबेरिया, चीन तथा फिलीपींस के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी इन गर्त चक्रों की उत्पत्ति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म तथा शीतकाल में चक्रवातों की उत्पत्ति सामान्य रूप से होती है। यद्यपि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास सबसे अधिक चक्रवात संख्या में चक्रवात उत्पन्न होते हैं, स्थल खंडों के अभाव के कारण इन चक्रवातों की यह पेटी अविच्छिन्न रूप से पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है। अंटार्कटिक महाद्वीप वर्ष भर अत्यंत शीतल एवं अस्थायी वायु राशियों की उत्पत्ति क्षेत्र होने के कारण यहां उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफान बड़े प्रबल और विनाशकारी होते हैं। ऐसे तूफान प्रायः उपध्रुवीय निम्न दाब द्रोणी में संकेंद्रित होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। सन 1863 ईस्वी फिट्ज़रॉय ने बताया कि मध्य अक्षांशीय चक्रवातों की उत्पत्ति दो विभिन्न गुणों वाली पवन धाराओं के मिलने से होती है। उनके अनुसार उष्ण एवं आर्द्र पवन धाराएं उपोष्ण कटिबंध से तथा शीतल और शुष्क पवन धाराएं ध्रुवों की ओर से चलती हैं। तत्पश्चात सन 1887 ईस्वी में एबरक्रॉम्बी ने वेदर नामक ग्रंथ में गर्त चक्रों का ऐसा आरेख बनाया जिसमें उनके विभिन्न भागों में पाई जाने वाली मौसमी दशाओं का प्रदर्शन किया गया था। सन 1911 ईस्वी में सा एंड लैम्फर्ड ने पुनः फिट्ज़रॉय द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर चक्रवातों के संबंध में अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व तक मध्य अक्षांशीय गर्त चक्र को के उत्पत्ति के विषय में किसी तर्कसम्मत एवं क्रमबद्ध अवधारणा का प्रतिपादन नहीं हो सका, किंतु प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी की अवधि में नॉर्वे के बर्गरान संप्रदाय के मौसम वैज्ञानिकों ने चक्रवात के विषय में किए जा रहे अनुसंधान के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। वी वर्कनीज तथा उनके सहयोगियों ने इस तथ्य का पता लगाया कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का संबंध वाताग्रहों से है। वी वर्कनीज तथा उनके पुत्र जे वर्कनीज ने चक्रवातों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसे ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत पोलर फ्रंट थियरी अथवा तरंग सिद्धांत वेव थियरी कहा जाता है। कुछ लोग इसे बर्जरोन सिद्धांत की संज्ञा प्रदान करते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक टॉर बर्गरोन ने मौसम मानचित्रों के विश्लेषण में इस सिद्धांत का अनुप्रयोग करके इसकी लोकप्रियता में और वृद्धि कर दी। वस्तुतः वायु राशि संकल्पना एवं वायु राशियों के वर्गीकरण का श्रेय इसी वैज्ञानिक को प्राप्त है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार। टाइप्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रकार के वायुमंडलीय विक्षोभ भी सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति ध्रुवीय वातागृकों पर न होकर अन्य कारणों से होती है। ऐसे गर्त चक्रों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला, अनवर्ती गर्त चक्र, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। कभी कभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पछुआ पवन की पेटी में प्रवेश कर जाते हैं। इन चक्रवातों के आगे बढ़ने के साथ ही इनमें ध्रुवीय वायुराशियां खींच कर चली आती हैं और क्रमशः इनमें वातागृकों का भी निर्माण हो जाता है। इस प्रकार इन चक्रवातों में मध्य अक्षांशीय चक्रवातों की विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी पछुआ पवनों की पेटी में प्रवेश करते ही अनवर्ती चक्रवात विघटित हो जाते हैं, किंतु कभी कभी इनका पुनर्वीकरण हो जाने से ये पूर्ण विकसित शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बन जाते हैं। दूसरा, तापीय गर्त चक्र, थर्मल डिप्रेशन। इस प्रकार के गर्त चक्रकों की उत्पत्ति स्थानीय उष्मन लोकल हीटिंग से उत्पन्न होती है। इन्हें तापीय निम्न दाब हीट लो भी कहा जाता है। ग्रीष्म काल में महाद्वीपों विशेषकर मरुस्थलों के अत्यधिक गर्म हो जाने से छिछले गर्त चक्रकों का निर्माण हो जाता है। ये प्रायः अपने उत्पत्ति क्षेत्र में ही स्थिरवत बने रहते हैं। इनसे मौसम में अल्पकालिक परिवर्तन होता है। संवहन कोशों की उत्पत्ति हो जाने से आकाश में घने कपासी मेघ छा जाते हैं जिनसे गरज के साथ छींटे पड़ते हैं। ये ऐसे क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं जहां ग्रीष्म काल में वातागृकों का पूर्ण रूप से अभाव होता है। फारस की खाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्रों में निर्मित ग्रीष्मकालीन गर्त चक्र एक विशिष्ट उदाहरण है। इनसे उत्पन्न मौसम में वातागृकी चक्रवात की विशेषताएं नहीं पाई जाती। तीसरा, अनुवात गर्त चक्र, ली डिप्रेशन। ऐसे गर्त चक्रकों की उत्पत्ति पर्वतों के वायुभिमुख ढाल की ओर होता है। राकी पर्वतमाला के पूरब में स्थित कोलोराडो तथा टेक्सास में ऐसे चक्रवातों की उत्पत्ति प्रायः शीतकाल में होती है। इनके निर्माण के कुछ समय बाद इन भ्रमणशील गर्त चक्रों में शीतल ध्रुवीय वायु पुंज के खिंच आने से वातागृकों का निर्माण हो जाता है। यूरोप में जेनेवा की खाड़ी तथा लम्ब्राडी के मैदानी भागों में ऐसे गर्त चक्र अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। इनके कारण आकाश में काले घने मेघ छा जाते हैं जिनसे मूसलाधार जलवृष्टि अथवा हिमवृष्टि होती है। इनके साथ तीव्र गति से हवाएं भी चलती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के सिद्धांत। थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। ऋतु पत्रकों सिनोप्टिक चार्ट के प्रकाशन के साथ ही उन पर प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की वायुदाब प्रणालियों का विश्लेषण किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होने वाले निम्न दाब गर्तों अथवा चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं का प्रतिपादन हुआ। इनमें से प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं: संवहन सिद्धांत कन्वेक्शनल थियरी, आवर्त सिद्धांत एडी थियरी, प्रतिधारा सिद्धांत काउंटर करेंट थियरी, एक्सनर का अवरोध सिद्धांत एक्सनर बैरियर थियरी तथा बर्कनीज का ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत अथवा तरंग सिद्धांत, पोलर फ्रंट थियरी और वेव थियरी। संवहन सिद्धांत कन्वेक्शन थियरी। संवहन सिद्धांत के अनुसार मध्य अक्षांशी गर्त चक्र की उत्पत्ति धरातल के स्थानीय तपन के कारण होती है। गर्म धरातल से संलग्न वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे वायु ऊपर उठती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चारों ओर से अपेक्षाकृत शीतल हवाएं चलने लगती हैं। पृथ्वी के आवर्तन तथा कोरियोलिस बल के कारण चक्रवाती पवन प्रणाली विकसित हो जाती है, किंतु वास्तविक निरीक्षण के आधार पर पाया गया है कि चक्रवात गर्त चक्रकों की उत्पत्ति ग्रीष्मकाल में कम और शीतलकाल में अधिक होती है। इसके अतिरिक्त इनकी उत्पत्ति महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों पर अधिक होती है। इनमें सम्मिलित वायु राशि न तो पूर्ण रूप से आवर्तन करती है और न ही पूर्ण रूप से उष्ण ही होती है। अतः महाद्वीपों के ऊपर ग्रीष्मकाल में उत्पन्न अल्पदाब क्षेत्रों को शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात नहीं माना जा सकता। इस प्रकार शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों के संबंध में संवहन सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया गया। आवर्त सिद्धांत एडी थियरी। इसके अनुसार मध्य अक्षांशी चक्रवातों को पछुआ पवन धाराओं में उत्पन्न भंवर आवर्त मान लिया गया। इन भंवरों का निर्माण धरातली विषमताओं तथा विपरीत दिशाओं से प्रवाहित होने वाली पवन धाराओं से माना गया, किंतु मौसम विज्ञान की कसौटी पर यह सिद्धांत त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुआ। बिगलो ने इस सिद्धांत में कतिपय संशोधन करके अपना प्रतिधारा सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार विपरीत दिशाओं से असमान तापमान वाली पवन धाराओं के मिलने से गर्त चक्रों की उत्पत्ति बताई गई, किंतु यह सिद्धांत भी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। एक्सनर ने अपने अवरोध सिद्धांत के अनुसार गर्त चक्रों को जल के उन भंवरों के समान मान लिया जो किसी नदी में निर्मित सेतु के खंभों के सरिता प्रवाह की विपरीत दिशा में बनते हैं। इनके अनुसार जब पछुआ पवनों के प्रवाह में किसी पठार अथवा पर्वत से अवरोध उपस्थित होता है, तब इन अवरोधों के वायु विमुख ढाल से कुछ दूर वायु दाब में कमी हो जाती है तथा पवन प्रवाह में चक्रवाती परिसंचरण का विकास हो जाता है। उन्होंने ग्रीनलैंड के गिरिपिंड मैसिफ के कारण आइसलैंड में उत्पन्न न्यून दाब क्षेत्र को एक विशिष्ट उदाहरण मान लिया, किंतु इस सिद्धांत के द्वारा भी शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों की उत्पत्ति की समस्या हल नहीं होती। इस प्रकार उत्पन्न गर्त चक्रों की वायुमंडल में ऊंचाई बहुत कम होती है, जो कि वास्तविकता के विरुद्ध है। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत पोलर फ्रंट थियरी। मध्य अक्षांशीय चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में प्रतिपादित किए गए अब तक के सभी सिद्धांतों में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत वास्तविकता के सबसे अधिक निकट है। इस सिद्धांत के अनुसार गर्त चक्रकों की उत्पत्ति ध्रुवीय वाताग्रकों पर उत्पन्न अस्थिर तरंगों से होती है। पछुआ पवन की पेटी में ध्रुवी तथा उष्णकटिबंधी वायु राशियां एक दूसरे के निकट विपरीत दिशाओं से प्रवाहित होती हैं। ज्ञातव्य है कि विपरीत गुणों वाली वायु राशियां जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तब इनके मध्य असातत्य पृष्ठ सरफेस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी का निर्माण हो जाता है, जिसे बर्गेन संप्रदाय के मौसम वैज्ञानिकों ने ध्रुवीय वाताग्र की संज्ञा प्रदान की है। जब ध्रुवीय वाताग्र का निर्माण करने वाली वायु राशियों में वाताग्र के समानांतर और परस्पर विपरीत दिशा में पवन प्रवाह होता है तथा वायु में ऊपर उठने की प्रवृत्ति नहीं होती, तब ऐसी स्थिति में वाताग्र स्थिर और संतुलित अवस्था में होता है। ऐसे वाताग्र पर मेघ अथवा वृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती तथा मौसम स्वच्छ रहता है। वाताग्र के निकट ध्रुवीय वायु राशि शीतल और भारी होने के कारण उष्ण वायु राशि के नीचे स्फोन वेज के रूप में पाई जाती है और दोनों वायु राशियों के बीच में एक सीमांत पृष्ठ बन जाता है, जिसका ढाल लगभग 1/100 होता है। इस पृथक्करण रेखा लाइन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पर विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन धाराओं के कारण प्रबल पवन कर्तन स्ट्रांग विंड शियर पाया जाता है। इस सीमांत पृष्ठ पर उसी प्रकार तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं जिस प्रकार किसी जलाशय के तल पर पवन चलने पर लहरियां बनती हैं। वाताग्रकों पर उत्पन्न कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जिनमें उत्पत्ति के उपरांत किसी प्रकार का विकास नहीं होता है और जिनके आयाम में वृद्धि नहीं होती। ऐसी तरंगे कहीं स्थित कहीं जाती हैं तथा इनकी उत्पत्ति और विघटन का कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं होता। इसके विपरीत कुछ ऐसी तरंगे उत्पन्न होती हैं जिनके आयाम में निरंतर वृद्धि होती जाती है तथा जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। इनके विकास के साथ ही चक्रवातों का भी विकास होता है। ऐसी तरंगे अस्थिर कही जाती हैं। बायर्स के अनुसार ऐसी तरंगों की उत्पत्ति के लिए 500 किमी से 3000 किमी तक का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ आवश्यक होता है। नवनिर्मित तरंगों के उत्पन्न होने से वाताग्र का संतुलन भंग हो जाता है, जिसे पुनः स्थापित करने के प्रयास में दोनों ओर से हवाएं चल पड़ती हैं। धरातल जनित घर्षण, प्रवर्ता बल तथा कोरियोलिस बल के सम्मिलित प्रभाव से चक्राकार पवन प्रवाह प्रणाली निर्मित हो जाती है। ज्ञातव्य है कि नॉर्वे के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वाताग्र पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगों से उसमें उभार और झुकाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप धरातल के सन्निकट वाताग्र पर तरंग उत्पन्न हो जाती है, जो आगे चलकर पूर्ण विकसित चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। इस सिद्धांत के अनुसार इन चक्रवातों के लिए अपेक्षित ऊर्जा दोनों वायु राशियों के तापमान और घनत्व में अंतर से प्राप्त होती है। ऊर्जा की कुछ मात्रा वाताग्रकों पर होने वाली संघनन की प्रक्रिया से भी प्राप्त होती है। चक्रवात के विकास की अवस्था। शीतोष्ण कटिबंध में ध्रुवीय वाताग्र पर उत्पन्न चक्रवात के विकास की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला प्रारंभिक अवस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था, चौथा संरोधावस्था। पहला प्रारंभिक अवस्था, इसमें ध्रुवी वाताग्र के दोनों ओर पवन धाराएं वायुदाब रेखाओं तथा वाताग्र के समानांतर प्रवाहित होती हैं। ध्रुवी हवाएं पूरब से पश्चिम तथा उष्णकटिबंधीय हवाएं पश्चिम से पूरब चलती हैं। तरंग जनित विक्षोभ उत्पन्न होने से पूर्व वाताग्र पूर्ण संतुलित अवस्था में रहता है। इस अवस्था में वायु विस्थापन नहीं होता, मौसम साफ रहता है, किंतु झुके हुए वाताग्र पृष्ठ पर वायु की दिशा में आकस्मिक परिवर्तन विंड सियर पाया जाता है। दूसरा शैश्वावस्था, इसमें वायु कर्तन अथवा वाताग्र पर तरंग की उत्पत्ति दिखाई गई है। जब कभी वाताग्र पर किसी अस्थिर तरंग की उत्पत्ति होती है, तब उसके आयाम में निरंतर वृद्धि होती है और 12 से 24 घंटे के भीतर इसका विकास तृतीय अवस्था में प्रदर्शित चक्रवात के रूप में हो जाता है। ध्रुवीय वायु राशि निरंतर उष्ण वायु राशि की ओर बढ़ती चली आती है तथा उष्ण अयनवर्ती वायु तरंग के आयाम में वृद्धि करती हुई वाताग्र के मुड़े हुए भाग की ओर आगे बढ़ती है। ध्रुवी वाताग्र में मोड़ पड़ जाता है। उष्ण वायु की जिह्वा के अग्रभाग को उष्ण वाताग्र तथा पिछले भाग को जहां पीछे से शीतल वायु राशि मिल रही है शीत वाताग्र कहते हैं। इस अवस्था में ध्रुवी वायु समदाब रेखाओं को काटती हुई वाताग्र की ओर बढ़ती है। उष्ण वायु वाताग्र की ओर मुड़कर अधिक उत्तर की ओर अग्रसर होती है। तीसरा प्रौढ़ावस्था, इसमें तरंग के शीर्ष भाग पर निम्न दाब केंद्र स्थित होता है। पछुआ पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है तथा वाताग्रकों का पूर्वी भाग की उत्तर की ओर उष्ण वाताग्र के रूप में विस्थापित हो जाता है। वाताग्र का पश्चिमी भाग शीत वाताग्र के रूप में दक्षिण की ओर बढ़ता है। दोनों वाताग्रों पर आकस्मिक मोड़ पड़ जाते हैं और यहीं पर वायु की दिशा में आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात की परिपक्व अवस्था कही जाती है। इस अवस्था में व्यापक रूप से वृष्टि प्रेसिपिटेशन हो जाती है। चौथा संरोधावस्था, इसमें चक्रवात का संरोधन ऑक्लूजन होता है। शीत वाताग्र के आगे बढ़ने की गति उष्ण वाताग्र की अपेक्षा अधिक होती है। अंत में शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र को आगे बढ़कर पकड़ लेता है और उष्णाद्र वायु धरातल से ऊपर उठती चली जाती है। संरोधन उष्ण वाताग्री अथवा शीत वाताग्री हो सकता है। संरोधन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक चक्रवात निचले भाग में ठंडी वायु राशि से भर जाता है और अंत में उसका पूर्ण विघटन हो जाता है। बर्कनीज द्वारा प्रस्तुत चक्रवात का प्रतिरूप, द साइक्लोन मॉडल ऑफ बर्कनीज। बर्कनीज ने एक आदर्श चक्रवात का प्रतिरूप तैयार किया जो उसकी प्रौढ़ावस्था का द्योतक था। बर्कनीज का चक्रवात मॉडल, जिसमें पूर्ण विकसित अवस्था में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आंतरिक संरचना है, ऊपरी भाग में एक पूर्ण विकसित चक्रवात प्रदर्शित किया गया है। चित्र के मध्य भाग में चक्रवात केंद्र के उत्तरी भाग को ऊर्ध्वाकार वर्टिकल क्रॉस सेक्शन तथा सबसे नीचे दक्षिणी भाग का ऊर्ध्वाकार दिखाया गया है। ऊर्ध्वाकार को देखने पर से ज्ञात होता है कि इस खंड में उष्ण वायु ऊंचाई पर पाई जाती है जो धरातल से पूर्णतया विच्छिन्न है। ऊपर उठी हुई इस वायुपुंज से वृष्टि होती है। इस खंड में धरातल पर उष्ण वायु पाई जाती है। सीडी रेखा पर मौसमी दशाएं। दोनों वातग्रकों पर उष्णाद्र वायु के ऊपर उठने के कारण ही मेघ निर्माण और वृष्टि संभव होती है। उष्ण वाताग्र पर वायु का आरोहण क्रमिक होने के कारण आकाश में मेघों की अविच्छिन्न परत छाई रहती है तथा विस्तृत क्षेत्र में लगातार कई घंटे तक फुहार के रूप में वृष्टि होती है। चक्रवात के आगमन की पूर्व सूचना पश्चिम दिशा में क्षितिज पर दिखाई पड़ने वाले पश्चाप तथा पश्चाप स्थिरी मेघों से मिलती है। वाताग्र और धरातल के आसपास स्थल से 1600 से 2400 किलोमीटर दूर से ही ये मेघ दिखाई पड़ते हैं, जिनसे रात्रि में चंद्रमा के तथा दिन में सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल हैलो का दिखाई पड़ता है। यदि आरोही उष्णाद्र वायु में अस्थिरता है तो आकाश में पश्चाप कपासी मेघों का निर्माण हो जाता है। उष्ण वाताग्र के नजदीक आने पर मेघों की ऊंचाई कम और मोटाई अधिक होने लगती है। अस्तरी मेघ, अस्तरी मध्य मेघ तथा कपासी मध्य मेघ का स्थान अस्तरी कपासी तथा वर्षाकारी मेघ ले लेते हैं। अस्तरी मध्य मेघ से प्रारंभ होकर वाताग्र के आगे बढ़ जाने तक वृष्टि होती रहती है। उष्ण वाताग्र के निकट आने पर तापमान में थोड़ी वृद्धि और वायु दाब में गिरावट अंकित की जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता में क्रमिक वृद्धि होती है। पवन की दिशा दक्षिण से दक्षिण पूर्व हो जाती है और आकाश में क्रमशः पश्चाबस्तरी, अस्तरी मध्य और वर्षाकारी अस्तरी मेघ दिखाई पड़ते हैं। उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर आकाश साफ हो जाता है तथा तापमान में थोड़ी वृद्धि हो जाती है। सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि के साथ साथ वायु दाब स्थिर हो जाता है। पवन दक्षिण पश्चिम से चलने लगता है।